हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आंशी अमन के साथ विधिक के होटल में थी। विधिक ने उसे वहाँ लगे आईने में देख लिया था। विधिक को अपने सामने देखकर आंशी की सांसें अटक गई। वो बीतते हर पल के साथ उसके पास आ रहा था। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। आंशी ही विधिक की गर्लफ्रेंड है। अमन, कुछ भी करके उस लड़की को बचाकर एजेंसी ऑफिस लेकर आओ। अमन के माइक्रोफोन में लावण्या की आवाज़ गूंजी। उसके बाद बीप की आवाज़ के साथ कॉल डिस्कनेक्ट किया। अमन तेज़ी के साथ आंशी के पास गया और उसको अपने पास खींच लिया। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा। अमन आंशी का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगा। विधिक को देखने के बाद आंशी अभी तक सकते में थी। वही उसके अचानक गायब होने पर विधिक बौखला गया। उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, शाहिद शाहिद, अभी के अभी सारे गेट बंद करवाओ। अपने आदमियों को बोलो कि सब यहाँ आ जाएं, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ एक लड़की है जिसने सफ़ेद शर्ट और ब्लू पैंट पहना है, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। हाँ भाई, समझो, हो गया, शाहिद ने तुरंत जवाब दिया और दौड़कर बाहर जाने लगा। रॉबिन और मेलिसा चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं? रॉबिन ने पूछा। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यकीन मानो, अगर इस बार तुमने मेरी हेल्प की तो तुम्हारे भाइयों सहित जितने भी रिश्तेदार जेल में हैं, मैं उन सबको 24 घंटे में बाहर निकलवा दूंगा, विधिक ने जवाब दिया। ये अच्छा ऑफर था। मेलिसा ना करने वाली थी, लेकिन रॉबिन ने तुरंत हाँ कह दिया। उसने कहा, तुम उसे यहाँ देखो, मैं मेलिसा के साथ बाहर जाकर चेक करता हूँ। पर हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है बेबी, भूल गए, इसने तुम पर गोली मारी थी, वो भी अपने घर बुलाकर। मुझे सब याद है और उसका बदला भी लूँगा, पर इसका ऑफ़र बहुत अच्छा है, तुम मेरे साथ आओ, किसी एक तगड़े बंदे को ले लो जो मेरी व्हीलचेयर खिसका सके। मेलिसा के ना कहने के बावजूद रॉबिन उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। वो दोनों होटल के बाहर निकले और इधर उधर आंशी की खोज करने लगे। वही विधिक होटल में अभी भी आंशी को ढूंढ रहा था। यकीन नहीं होता, तुम मेरे इतने पास थी, वो भी बिना मेरे किसी एफर्ट किए, फिर मेरे हाथ से गई। बिल्कुल सही नाम दिया है मैंने तुम्हें, बटरफ्लाई, जितना पकड़ने की कोशिश करो उतना ही दूर भागती है, पर अब और नहीं। ज़रूर तुम्हें उसी लड़की ने बचाया होगा जो कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ गाड़ी में था। विधिक खुद से बातें करते हुए आंशी को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था। वही अचानक सारे गेट बंद होने के बाद अमन और आंशी वहां फंस चुके थे। वो अंडर कंस्ट्रक्शन लिफ्ट के अंदर थे। उन्हें विधिक की आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी। आंशी ने गुस्से में अमन की तरफ देखा और दबी आवाज़ में कहा, मन तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन यहां से निकलने के बाद मेरे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना तुम। अमन की नज़रें झुकी हुई थीं। मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यकीन रखो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊँगा, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर मैं इसके हाथ लग गई तो सबसे पहले इसे बोलकर तुम्हें इस दुनिया से विदा करवाऊँगी। अमन ने पहली बार आंशी की आंखों में सच में गुस्सा देखा था। उस तरफ हल्का सा शोर होने पर विधिक उधर की तरफ आया। कौन है वहाँ? उसने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज़ सुनकर अमन ने आंशी के मुँह पर अपना हाथ रख दिया। जगह कम होने की वजह से दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। आंशी उससे अलग होने के लिए छटपटा रही थी। अमन ने उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच में उस हैवान के पास नहीं जाना चाहती तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। आंशी ने उससे दूर होने की कोशिश बंद कर दी। जब उन्हें लगा विधिक वहां से चला गया, तब अमन आंशी के साथ वहां लगे लोहे के पाइप के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। आंशी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। दोनों जैसे तैसे करके उस जगह से बाहर निकले। जैसा कि प्लान में था, उन्हें गार्डन के पिछले हिस्से से बाहर निकलना था। वो उस हिस्से तक पहुंचे, दरवाज़ा बंद था, लेकिन फिर भी अमन की टीम वहां होने की वजह से वो दोनों आराम से उस जगह से निकल चुके थे। बाहर आकर उन्होंने देखा अमन की गाड़ी वहां नहीं थी। अब हम वापस कैसे जाएंगे? आंशी ने हैरानी से कहा। थोड़ा आगे चलकर मेन रोड है, हमें वहां से हेल्प मिल जाएगी, अमन ने जवाब दिया। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों वहां से चलने को हुए ही थे कि तभी उनके पीछे से आवाज़ आई, चुपचाप दोनों वहीं पर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये रॉबिन की आवाज़ थी। उसने हवाई फायर किया। पीछे मुड़कर मत देखना और मेरा हाथ पकड़कर जितना तेज भाग सकती हो उतना भागना। अमन को उस वक्त सूझ नहीं रहा था, उसने आंशी का हाथ पकड़ा और बिना सोचे समझे सामने की तरफ भागने लगा। उन्हें भागते देख मेलिसा ने कहा, हमें विधिक को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वो और उसके आदमी बाहर होंगे तो इन दोनों को पकड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। रॉबिन ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और विधिक को कॉल करके तुरंत बुलाया। उन दोनों के आदमी अभी भी आंशी और अमन के पीछे थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी सामने एक मैरिज हॉल था जिसके अंदर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा हुआ था। भीड़ का सायदा उठाकर अमन और आंशी वहां पर चले गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि रॉबिन और मेलिसा के किसी भी आदमी ने उन्हें वहां से जाते हुए नहीं देखा। वही जब विधिक रॉबिन के बुलाने से बाहर आ रहा था, तब रास्ते में उसे एक पेपर दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और खोलकर देखने लगा। उसे देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आंशी यहाँ किसी सीक्रेट एजेंट के साथ आई थी। वो किसी तरह का परमिशन लेटर था जहाँ सीक्रेट एजेंसी की मुहर लगी हुई थी। उसे देखने के बाद विधिक गुस्से से भर गया। वो उस पेपर के साथ बाहर गया। उस लड़की के साथ एक लड़का भी था, कैसे भी करके उसे ढूंढो, वो एक सीक्रेट एजेंट है। वो यहाँ आया हुआ था, इसका मतलब उसने हमारी मीटिंग में हुई सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होगा। उस लड़की से ज्यादा जरूरी उस आदमी को ढूंढना है। विधिक ने बाहर आकर रॉबिन और मेलिसा को वो पेपर दिखाया। मिस्टर एके, शायद ये वही सीक्रेट एजेंट है जिसके बारे में यहाँ जिक्र हुआ है। हाँ, हमने देखा था, उसके साथ एक आदमी था, मेलिसा ने कहा। वो हमारी आंखों से ओझल हो चुके हैं, पर हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, रॉबिन ने विधिक को आश्वासन दिया। अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो, जहाँ जितने भी होटल्स, दुकानें, ढाबे या कोई भी दुकान, किसी को मिस मत करना। उन सब में जाकर उन दोनों को ढूंढो, विधिक ने कहा और एक आदमी के साथ गाड़ी लेकर वहाँ आसपास की जगहों का मुआयना करने लगा। रॉबिन और मेलिसा सहित उनके सारे आदमी अमन और आंशी को ढूंढने में लग गए। वो इस बात से बेखबर थे कि वो दोनों सामने सामूहिक विवाह समारोह में घुस गए हैं। विधिक से जैसे तैसे जान छुड़ाने के बाद अमन और आंशी सामूहिक विवाह समारोह में थे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वहां जाते ही वो दोनों सीधे एक कमरे में घुस गए। उस कमरे में कोई नहीं था, वहां दूल्हा और दुल्हन के कपड़े रखे हुए थे। वहां आते ही आंशी गुस्से में अमन पर बिफर पड़ी। एक बात तो साफ है कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, अब कोई बहाने मत बनाना। क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे, मिस्टर सीक्रेट एजेंट, कि तुम अपने मिशन के लिए मेरी जान खतरे में कैसे डाल सकते हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और ना ही कुछ बताने वाला हूँ। अमन वहाँ टेबल पर बैठ गया। तुम्हें बताना होगा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर इतना यकीन किया तो तुम मुझे विधिक को, आंशी बोलते हुए रुक गई। वो अमन के सामने विधिक और अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी।
इसका मतलब तुम भी विधिक को जानती हो? तुम ही उसकी वो गर्लफ्रेंड हो ना जो उससे पेरिस में मिली थी, है ना बटरफ्लाई? मैं बार बार तुमसे पूछता रहा, लेकिन तुमने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। तुम्हारे सब छुपाने की वजह से ये सब हो रहा है। मैं इस कदर मजबूर हो गया कि मुझे तुम्हें विधिक के सामने ले जाना ही पड़ा, अमन ने गुस्से में जवाब दिया। क्या बताती मैं तुम्हें? हाँ, तुमने भी तो मुझसे अपना सच छुपाया। हाँ, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, हम अपनी आईडी से किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते। हाँ, तो ये समझ लो मेरी भी मजबूरी थी, मैं सबको नहीं बता सकती थी। मन तो कर रहा है तुम्हारा खून कर दूं, तुम मुझे उसके पास लेकर जा भी कैसे सकते हो? मुझे तो सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। तुम ना बिल्कुल अपनी उस चुड़ैल गर्लफ्रेंड की तरह हो और उसी के लायक हो। बेवजह मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, आंशी एक सांस में गुस्से में काफी कुछ बोल गई। मुझे और किससे बचाने की कोशिश कर रही थी? पहले उस क्रिमिनल से खुद को तो बचा लो जो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है, अमन ने आंशी का मजाक बनाते हुए कहा। एक दूसरे से एक लंबी चौड़ी बहस करने के बाद दोनों वहां थक कर बैठ गए। उन्हें बैठे कोई 5 मिनट ही हुए होंगे कि उनके कमरे में एक लड़का और एक लड़की आई। अपने कमरे में उन दोनों को देखकर वो हैरान थे। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा रूम नंबर है, लड़के ने हैरानी से पूछा। देखो, हमारा इस शादी और इस फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारी जान के पीछे पड़ा है, बस इसीलिए कैसे भी करके हमें कुछ देर के लिए यहाँ छुपने दो, आंशी ने जवाब में कहा। आंशी की बात सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, पर बदले में तुम दोनों को भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, लड़के ने कहा। कैसी हेल्प? अमन ने पूछा, हम दोनों की शादी में होने वाली है। एक्चुअली हम दोनों ही इस शादी से खुश नहीं है। हम दोनों किसी और से प्यार करते हैं और हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ सामूहिक विवाह समारोह में शादी करेंगे। यहाँ काफी सारे जोड़े होते हैं तो यहाँ से भागने में आसानी होगी। पर हमारे घर वाले, उन्हें सब पता चल गया और उन्होंने कुछ गुंडों को यहाँ बुला लिया। वो हमारी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। हम चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकते। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? लड़की ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो काफी उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देख रही थी। आंशी उन्हें मदद के लिए हाँ कहने ही वाली थी, तभी अमन बीच में बोला, हम इस सिचुएशन में नहीं है कि किसी की भी मदद कर सकें। अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाओ और जाकर अपने घर वालों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो हमारे घर वाले हैं। हमने ऐसा किया तो पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाएगी, लड़की ने कहा। वो सब मैं नहीं जानता, अमन ने काफी रूखे तरीके से कहा। मेरी प्रायोरिटी इस लड़की की जान बचाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब हम सेफ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। देखो ना, बेचारे कितनी उम्मीद से हमसे हेल्प मांग रहे हैं। तुमने अपनी जिंदगी में एक भी भला काम नहीं किया होगा, इनकी मदद करके कुछ तो अच्छा काम करो। आंशी उनकी मदद करने के लिए पूरी तैयार थी, पर अमन ने ना में सिर हिला दिया। ठीक है, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो तुम दोनों को हमारे कमरे में भी रहने का कोई हक नहीं है। चुपचाप दोनों निकलो यहाँ से, लड़की गुस्से में बोली और उन दोनों को वहाँ से निकालने लगी। अब अमन के पास और कोई चारा नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, बोलो क्या करना है? उसके हाँ कहते ही उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लड़की ने कहा, बाहर हमारे घर वाले खड़े हैं और उन्होंने हमें अंदर आते हुए देखा है। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें अपने कपड़े दे दो और हमारी जगह दूल्हा और दुल्हन बनकर तैयार हो जाओ। इससे क्या होगा? आंशी ने पूछा। वो जब यहाँ आएंगे और तुम दोनों को इन कपड़ों में देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो गलत कमरे में आ गए हैं। हम लोग तुम्हारे कपड़े पहनकर आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। प्लीज हमारी इतनी हेल्प कर दो, लड़के ने गिड़गिड़ा कर कहा। आंशी ने अमन की तरफ देखा, उसने हाँ में सिर हिला दिया। वहाँ एक बाथरूम बना हुआ था। उन चारों ने कपड़े एक्सचेंज किए। उस लड़की ने आंशी की तरफ देख कर कहा, तुम दोनों पूरी तरह तैयार हो जाओ ताकि किसी को शक ना हो। थैंक यू सो मच हमारी इतनी हेल्प करने के लिए, लड़के ने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर उन्हें बाय बोलकर दोनों पीछे के दरवाजे से वहाँ से जाने लगे। वो दोनों एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस चुके थे। रास्ते पर उन्हें रॉबिन के आदमियों ने पकड़ लिया था। उस लड़की ने आंशी के कपड़े पहने थे, इस वजह से उन्होंने उसे आंशी समझ लिया था। क्या लगता है आपको, इतनी प्रॉब्लम के बाद अमन और आंशी आसानी से विधिक से बच पाएंगे? कहानी को पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा।